हर एक भाई को, बहन को, माताओं को अपने बारे में विशेष सुधार करने के बारे में सोचना चाहिए। अपना कल्याण कैसे हो, अपना व्यवहार कैसे सुधरे, इस बात पर हरदम सजगता रहनी चाहिए। जैसे आदमी यह सोचता है कि मुझे धन कैसे मिले, मैं सुख सुविधा में कैसे रहूं, यह न देख करके ये देखना चाहिए कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, सुधार कैसे हो, मेरा व्यवहार अच्छा कैसे हो, दूसरों को सुख देने वाला कैसे हो। अपने व्यवहार की तरफ विशेष ख्याल करना चाहिए। यदि आप लोग अपना अपना व्यवहार देखोगे तो आपको ये ठीक मालूम देगा कि हमारे अंदर बड़े भारी पोल के गड्ढे हैं और इसी प्रकार से हमारा जीवन चलता रहा तो इससे भगवान की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे स्वभाव में पक्षपात है, राग है, द्वेष है, काम क्रोध लोभ की तो कोई सीमा ही नहीं है, वस्तु में ममता है, परिवार में ममता है, इनका सुधार किए बिना हमारा भगवत प्राप्ति का काम कैसे होगा। मानव शरीर का समय हाथ से निकल जाएगा, फिर रोना कोई काम नहीं आएगा। यदि रोना है तो जीते जी रो लो। ये मैं आपको बहुत सार की बात बताता हूं। जिस प्रकार ऋण लेने वाला, उधार लेने वाला व्यक्ति अपने रुपए के चुकाने के फेर में रहता है, उसके मन में एक ही बात रहती है कि मेरा ऋण चूक जाए, मेरा ऋण चूक जाए। यदि उसके पास करोड़ों रुपया है और दूसरी तरफ उसके पास हजारों रुपयों का ऋण है तो वो करोड़ों रुपए का सुख न लेकर हजारों रुपए का ऋण चुकाने का सोचता है। इसी प्रकार हमें भी अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है, एकांत में बैठो, शांति से बैठो। रात्रि में अंतिम पहर में जल्दी सी जग करके एकांत शांत वातावरण में सोचो, निष्पक्ष होकर सोचो कि वास्तव में मैंने मेरे जीवन का उद्देश्य क्या बनाया है। मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं। यदि अंदर से आवाज आए कि मैं तो भोग पदार्थ चाहता हूं, धन चाहता हूं, तो फिर सोचे कि क्या भोग पदार्थ तुमको मिले नहीं है, क्या तुमको धन मिला नहीं है। जितना तुमको मिला है उतने से तुम लाभान्वित नहीं हुए, अब और मिलेगा उससे तुमको क्या लाभ हो जाएगा, ये बात खुद के सोचने की है। हिम्मत यहां तक होनी चाहिए कि अब अपने इस जीवन में अपना सुधार करना ही है, भगवान की तरफ चलना ही है, चाहे ये जीवन मिट्टी में ही मिलाना क्यों न पड़े। ऐसा विचार करके परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम का बर्ताव करो, निष्कपटता का व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो, किसी को चुभने वाली बात मत कहो, अपनी गरिमा समझकर बोलो, आप कौन हैं, आपकी वाणी से क्या निकलना चाहिए और आपकी वाणी से क्या शब्द निकल रहे हैं, इनको अंदर से तोल करके बोलो। हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि घर में सासू का स्वभाव कठोर होता है, तो वह अपनी बहू पर कठोर शासन करती है। सासू ये भूल जाती है कि उसकी जो बेटी है वो तो अपने शरीर से पैदा हुई है और बहू जो घर में आई है वो एक धार्मिक रीति से आई है, तो बेटी के आने की अपेक्षा बहू का आना यहाँ ज्यादा पवित्र है। ऐसी बहुरानी को भला बुरा कहना ये सासू के ऊंचे पद पर बैठकर अच्छा नहीं लगता, उसके कोमल मन पर आपके कठोर स्वभाव का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी अवस्था में यदि बहू कुछ न करने वाला काम कर ले तो उसका पाप सासू को लगता है, वो सासू नरक में जाती है। तो सासू को अपनी बहू को बेटी से बढ़कर समझना चाहिए, इधर बहू को विचार करना चाहिए कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मैंने जिस मां से जन्म लिया उस मां के बाद मुझे उससे भी बढ़कर मां और मिल गई है। सासू यदि कभी कठोर बात कह भी दे तो बहू को यह सोचना चाहिए कि मेरी मां भी तो मुझे कठोर बोलती थी, उसकी बात मुझे बुरी नहीं लगी, मुझे सासू की बात बुरी क्यों लगती है। जरूर मेरे मन में अपनी मां और अपने सासू दोनों के विषय में भेद है, अपनी मां से बढ़कर बहू को अपनी सासू का आदर करना चाहिए। जिस दिन सासू ज्यादा डांटे कठोर बर्ताव करे उस दिन बहू को खूब ज्यादा प्रसन्न होकर के अपनी सासू की ज्यादा सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ में यह सबसे बड़ी तपस्या है। अपने अच्छे व्यवहार से सासू के स्वभाव को बदला जा सकता है। कोई आदमी किसी के स्वभाव को डांट डपट करके कठोरता से या संघर्ष से नहीं बदल सकता। अपना अच्छा व्यवहार करो, उसके मन पर यह असर पड़ेगा कि देखो मैंने इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसने मेरे साथ अच्छा किया, तो इसको तो बहुत अच्छाई मिली, मुझे बुराई मिली, मैं क्यों बुरा बनूं, मैं भी अच्छाई करूं। ऐसे भाव अपने आप बुरे बर्ताव करने वाले के मन में आ जाएंगे। इसलिए बड़ों के प्रति बराबर का कठोरता का बर्ताव नहीं करना चाहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, सेवा करके उनके चित्त में एक प्रसन्नता पैदा करनी चाहिए। बड़ों के आशीर्वाद से आयु बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, अपना यश बढ़ता है और बल बढ़ता है और अपना सुधार होता है। और बड़ों की प्रसन्नता से जितना जल्दी सुधार होता है उतना अपने भजन साधन से भी नहीं होता। माने सासू का खूब आदर करते हुए, उनके कठोर वचन को सहते हुए उनसे आशीर्वाद ले लें तो उस आशीर्वाद से जितना जल्दी सुधार होता है उतना जल्दी भजन से नहीं होता। भजन तो हमको कल्याण के लिए करना है, अच्छी बात है, इसके लिए तो हमको मानव शरीर मिला ही है, परंतु व्यवहार सुधारते हुए भजन करते हैं उस भजन की कोई कीमत आंक नहीं सकता है। हर एक भाई बहन को अपनी गलती देखनी चाहिए, दूसरे की गलती पर विचार नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई गलती करता है तो उस समय यह सोचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि यह सोचना चाहिए कि भगवान हमारी परीक्षा के लिए इनसे कठोर काम करवा रहे हैं, कठोर बर्ताव करवा रहे हैं, मेरी परीक्षा है। जैसे लड़का परीक्षा देता है तो उस समय उसके पास पुस्तक नहीं रहती, वो किसी से बोल नहीं सकता, वो भोजन नहीं कर सकता, परीक्षा देते हुए कोई रोटी थोड़ी खाता है, वो भोजन नहीं कर सकता, वो किसी से बात नहीं कर सकता, वो अपने मन का कोई व्यवहार नहीं कर सकता, केवल उसको परीक्षा देनी होती है। यदि वो अच्छा पेपर लिखता है तो वो पास हो जाता है, और यदि वो वहां कुछ नहीं करता तो वो फेल हो जाता है। ऐसे जो अपना सुधार करते हुए भगवान का भजन करता है, व्यवहार सुधार करते हुए भगवान का भजन करता है, वह अपना वो परीक्षा में पास हो जाता है। हरदम इस बात का विचार करो कि भगवान जैसा कोई दूसरा दयालु है नहीं। यहां बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, इनके यहां पहरेदार होते हैं, पहरेदार की मर्जी हो तो वो राजा के पास जाने दे, पहरेदार की मर्जी नहीं हो तो वो राजा महाराजा से न मिलने दे। परंतु भगवान सारे ब्रह्मांड के राजा है, परंतु इनका दरबार एकदम खुला है, किसी का पहरा नहीं है, मर्जी आए तब जाऊं। ऐसा नहीं कि दिन में आओ रात में मत जाओ, ऐसा नहीं कि अभी भगवान भोजन करते हैं तो नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई अटकाव नहीं है। लिखा था कोई आंट नहीं है, कोई अटकाव नहीं है। अरे हम तो कहते हैं कि भगवान के दरबार में जाने की क्या जरूरत है, भगवान तो स्वयं आपके पास आने के लिए तैयार बैठे हैं। सुदाजा सुदामा जी ने क्या किया, वो दरवाजे पर गए, पहरेदारों से पूछा, पहरेदारों ने आगे की तरफ इशारा कर दिया। सुदामा जी को कुछ पता ही नहीं है। इतने में भगवान स्वयं सिंहासन छोड़ के आए, सुदामा जी से मिल गए। राजा महाराजा करोड़पति के यहां ऐसा नहीं होता है कि वह अपने से मिलने के लिए दौड़ा दौड़ा आए। कोई राजा नहीं आता, कोई महाराजा नहीं आता, कोई करोड़पति नहीं आता। वो तो यही देखता है कि मेरे पास आओ, तुम मिलने आए हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास क्यों जाऊं, ऐसा उनमें अहंकार होता है। पर भगवान में कोई अहंकार नहीं होता। राजा महाराजा और करोड़पति के मन में हमारे प्रति कोई दया कोई प्रेम नहीं है। हम तो अपने स्वार्थ से वहां जाते हैं, परंतु भगवान के मन में हमारे प्रति प्रेम की लहरें दौड़ती हैं। उनके मन में बहुत प्रेम है। तुम भगवान के प्रेम को देखकर व्याकुल हो जाओ। जैसे जल में मछली, जल के बिना मछली व्याकुल होती है, ऐसे भगवान के बिना व्याकुल हो जाओ। हे भगवान, आप तो हमसे इतना प्रेम करते हो, हमको इतना चाहते हो, आप इतना प्यार करते हो, दुलार करते हो, और मैं आपकी परवाही नहीं करता हूं, ऐसी जिंदगी निकल गई, बहुत बड़ा घाटा हो गया, ऐसा समझ करके व्याकुल होना चाहिए। व्याकुल होने पर द्रौपदी का वो दृश्य याद करना चाहिए। भगवान को कहना चाहिए, हे भगवान, उस असहाय द्रौपदी की आपने उस सभा के अंदर जैसे लाज बचाई, ऐसे प्रभु मेरी लाज इस ब्रह्मांड में जा रही है, बचाओ। द्रौपदी के पास वहां सब लोग बैठे हुए थे, पति बैठे हुए थे, पितामह बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, राजा धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे। एक भी द्रौपदी की सहायता के लिए नहीं आया। किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि जो द्रौपदी के इस व्यथा के अंदर यह कहते हैं कि दुर्योधन ने बड़ा अन्याय किया है, कोई बोला तक नहीं। ऐसे समय में आप स्वयं आए, द्रौपदी के वस्त्र के रूप में आपने अवतार लिया और द्रौपदी की आपने रक्षा की। ऐसे प्रभु, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, परंतु कोई मेरा नहीं है, इसमें संसार का क्या कसूर है, मैं भी तो किसी के नहीं हूं ना, मैं भी किसी के क्या काम आया, तो दूसरे भी मेरे क्या काम आएंगे। इसलिए प्रभु, आप ही एकमात्र मेरे आधार हैं। ऐसे आतुर भाव से भगवान के लिए बार बार पुकारना चाहिए। आपके मन में सच्ची व्याकुलता होगी तो भगवान भी आपके लिए व्याकुल हो जाएंगे। सज्जनों, भगवान बहुत दयालु है, भगवान बहुत कृपालु है। भगवान बिना किसी स्वार्थ के संसार का हित करते हैं। इसलिए हमें भी बिना कुछ चाहे भगवान का भजन करना चाहिए। देखो, जितने परिवार के सदस्य हैं उनके रूप में भगवान है, जिन भगवान को हमें प्राप्त करना है वे भगवान ही तो पिता माता के रूप में है, वे भगवान ही तो सास ससुर के रूप में है। अब इनको प्रसन्न नहीं करोगे और अलग से भगवान का ध्यान करके भगवान को प्राप्त करोगे, ये मार्ग बेसमझी का है। इनको भगवान समझो, इनमें भगवान समझो, इनके अच्छे व्यवहार को खूब हृदय में धारण करो और इनके कड़े व्यवहार को भगवान का व्यवहार समझ करके सहनशील बनो। इसमें आपको अपार लाभ है, क्योंकि हम लोग उच्च कोटि के बनने के लिए यहाँ आए हैं। माताएं भी चाहती हैं, बहन भी चाहते हैं, भाई लोग भी चाहते हैं कि हम लोग ऊंचे बने, पर ऐसे ऊंचा काम किए बिना ऊंचे कैसे हो जाओगे? आप जितने सत्संग करने वाले हो, आप लोग अपने घरों में यदि प्रेम के वातावरण से साधन का श्री गणेश करो और उसमें कोई बाधा आए तो आप हमसे पूछो, हमको बहुत प्रसन्नता होगी। इसमें कोई खास संशय की बात भी नहीं है, एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखने हैं। अंग्रेज लोग ऊपर का व्यवहार तो बहुत अच्छा करते हैं, व्यवहार तो उनका सीखो, परंतु वे अपने अंदर के कुटिलता को छिपाए रखते हैं। ऐसा व्यवहार अपने को नहीं करना चाहिए। अंग्रेज लोग बोलते हैं तो पहले हंसते हैं, उसके बाद बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, बाद में बोलते हैं। अच्छा व्यवहार है, पर यह केवल दिखने दिखने का है, सभी के लिए नहीं कहते हैं। पर उनके यहां एक ऐसी सभ्यता है, ऐसा हमने सुना है कि हंस करके बोलो, हंसो और प्रेम से बोलो, परंतु अपने अंदर के भाव क्या है वो अपने को पता नहीं चलता। अपने भी अंदर के भाव को भी प्रेम में बदलो और ऊपर का व्यवहार भी प्रेम का करो। प्रेम ही प्रेम छाया रहना चाहिए। ऐसा कोई व्यवहार मत करो कि दूसरे लोग हमारे नाम से घबरा जाए और कहने लगे, अरे वो आदमी, बाप रे बाप, उससे तो पिंड छोड़े, उससे तो न मिले तो बड़ा अच्छा है। ऐसा कोई हमारे लिए न कहे। अपने दोषों को देखो, अपने दोषों को निकालने का प्रयत्न करो, आपकी भगवान मदद करेंगे। यदि आपके अंदर दोष रह गए तो फिर नरकों में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। इसका अर्थ क्या है? जैसे कोई छबड़ी है, उसमें बहुत से कबूतर डाल दिए तो भर गई छबड़ी, और ऊंची आ गई और ऊंची आ गई, फिर भी लाके उसको डाल दिया, वो कबूतर कसम हो रहे, उनको जगह नहीं मिलती लेकिन ठूसा जाता है। ऐसे नरक के अंदर ठूस ठूस के भरा जाएगा। उसके लिए मानव जीवन थोड़ा ही है। भगवान का परम धाम नरक थोड़ा ही है। लड़ाई झगड़ा करने वाली सास बहू नरक के नाम से तो घबराती है, परंतु नरक में जाने का रास्ता बिल्कुल बेखटके तैयार करती है। आपस में प्रेम नहीं रखती, खूब सुंदर आदर्श व्यवहार करना चाहिए। पुरुषों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपना व्यवहार प्रेम पूर्वक करने से अपने को शांति मिलती है, दूसरों को शांति मिलती है, और सबसे बड़ी बात है भगवान प्रसन्न होते हैं। तीनों काम होते हैं। भगवान का भजन करने से भगवान और आप दो ही राजी होते हैं, परंतु अच्छा व्यवहार करने से तीनों प्रसन्न होते हैं। सबके साथ खूब प्रेम का सुंदर व्यवहार रखे, जिससे लोगों का मिलने का मन बना रहे और सब आपस में प्रसन्न होकर के रहे। जिसको लोग ज्यादा चाहते हैं उसको श्रेष्ठ कहा जाता है। ये ज्यादा चाहना उसके स्वभाव पर है। ऐसे तो राजा महाराजा के पास बहुत लोग जाते हैं, धनी आदमी के पास बहुत लोग जाते हैं, उससे तात्पर्य नहीं है। जो गुणों के कारण से लोगों को आकृष्ट करता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान के यहां भी उसकी मांग रहती है। प्रत्येक भाई बहन को इस बात को अपने में घटाकर ले देखना चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि सबके मन में हमारी कायदे की जगह बने, झूठी वाणी न बोले। वाणी में अमृत का निवास है और वाणी में भी जहर है, दोनों है। मीठा बोलो, मीठा बोलन निचलन, पर अवगुण ढकलेन, पांचों संगा नाक का हथज हाथा देन। मीठा बोलन, मीठा बोलना, निव चलन नम्र होकर के रहना, मीठा बोलन निव चलन पर अवगुण ढक देन। किसी की बुराई नहीं करनी, कोई करे तो उसको बड़ाई में बदलो। भाई जी के यहाँ किसी ने कहा कि भाई जी आदमी चोर है। नहीं नहीं, ये चोर नहीं है, चोर नहीं नहीं है ये। कि भाई जी इसने 200 रुपए निकाल लिए, पता है उसको बुलाया, इधर आए। अरे ऐसा कर, ये मेरा एक काम है, जा वो गीता प्रेस में जाके काम करके उसको बुला दिया वहां से। लोगों ने कहा भाई जी आप तो एक तरह से चोर को चोरी करने की सहायता कर रहे हो। भाई जी ने कहा अरे वो चोर है ही कौन। भाई जी अगर खुद रोने लग गए, भाई वो चोर नहीं है, आप लोग उसके पीछे पड़े हुए, चोर नहीं है। अब देखो संत के वचन है, उन्होंने कहा कि इसने चोरी की है। भाई जी कहते चोर नहीं है। मैं जोर से कहता हूं कि चोर नहीं है। तो कहा अभी हम उसको लेके आते हैं, बुला लाओ। वो अपना काम करके आया और उसको सामने बुलाया। देखो तुमने वो 200 रुपए निकाले थे ना। भाई जी कहते हैं निकाले थे, अभी चोर नहीं है। बोलो निकाले थे वो, अभी चोर नहीं, मैं अभी की बात करता हूं। वो भाई जी के पैरों में पड़ गया, भाई जी चोरी तो मैंने की। तू झूठ बोलता है, तूने चोरी की नहीं, तू चोर है ही नहीं, तू चोर नहीं है। अब बार बार ऐसा कहा तो उसने कहा भाई जी अब जिंदगी भर मैं चोरी नहीं करूंगा। भाई जी ने कहा लो सुन लो, भगवान माफ करते हैं, तुम और हम होते कौन है। किसी का कोई भूतकाल में दोष हो गया उसको लेकर किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए। वाणी में अमृत है, वाणी में ही जहर है। हमें तो अपनी तरफ से उत्तम भाव मन में भरने चाहिए और दूसरे का ऊंचा भाव ही लेना चाहिए। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है कि जिसमें अच्छाई न हो, अच्छाई की बात कहनी चाहिए। समता में बड़ी भारी ताकत है। हमको एक कहानी याद आई। एक समय राजपूताने का एक वैश्य अकाल के समय आसाम गया अपने मित्र के यहां गया, वह देख करके डरा और संकोच में पड़ा। अपनी स्त्री से कहा कि मेरा मित्र आया है, अब भोजन कराना है। उस स्त्री ने भी कहा कि कैसे ऐसे ऐसे अपने मित्र आते रहते हैं, कोई यही रोटी पड़ी है क्या? अकाल पड़ता है तो केवल आपके ऊपर ही आपके माथे पर ही आकर पड़ता है क्या? स्त्री भी ऐसा ही बोले। उसने अपनी स्त्री को समझाया कि देखो सबके ऐसे दिन नहीं आया करते, अब आ गए अपने यहां आ गए तो देखो अब भोजन वगैरह तो यही कराना है। बेचारे का अकाल पड़ गया, क्या करे। वो जो महानुभाव आया उसने अपने मित्र से अकाल की सारी बात बताई कि क्या करूं, रोटी का संशय पड़ा हुआ है, क्या तुम्हारे यहां कोई जगह मिल जाएगी? तब वो आसाम में रहने वाला मित्र चुप हो गया और अपने मित्र को भोजन कराया। भोजन साधारण ही करवाया था क्योंकि वो भी कोई बहुत बड़ा धनी नहीं था। फिर समय बदला और फिर अच्छा भोजन कराया और अपने कमरे में सुलाया। उसमें खटमल मच्छर थे, नींद नहीं आई। सवेरे वो शहर में गया, एक देश का कोई और आदमी मिल गया। उसने कहा कि अरे तुम कहां ठहरे हुए हो? कि भाई मैं एक मित्र के यहां ठहरा हुआ हूं, तो चलो तुम मेरे पास चलो। वो अपने यहां ले गया, वहां पर खूब अच्छा भोजन और खूब अच्छे रहने की जगह, मच्छरदानी वगैरह लगा दी और कहा कि हमारे सेठ के पास चलो, तुमको काम मिल जाएगा। तो वो सेठ के पास ले गया। सेठ से कहा कि बड़े ईमानदार है, परंतु कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, आज इनके रोटी खाने की समस्या हो रही है, अब आप इनको यहां नौकरी दे दो। सेठ ने कहा कि तुम्हारे यहां और कौन कौन जान पहचान का है? तो उसने कहा एक तो यही है जो आपके पास लेके आया, एक मेरा मित्र और है। उस मित्र के यहां तुम गए थे कि गए थे? उसने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया? वो बड़ा साधारण है, साधारण घर में रखा, साधारण भोजन दिया और इसने मुझे बहुत अच्छा रखा। तो सेठ ने कहा कि तुमने उसकी कमी क्यों बताई? थोड़ी बहुत कमी तो सब में रह ही जाती है। जिसने तुमको बिना किसी राग लपेट के जैसी भी थी सहायता की, जैसी स्थिति में था वैसा उसने अपने को भोजन करवाया, जैसा उसके पास कमरा था वैसा रखा, परंतु उसकी तुम कमी बताते हो तो कल ने इसी प्रकार हमारी भी कमी बताते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? उसने अपनी गलती मान ली और कहा कि जीवन में किसी की कमी बताना तो भगवान की कमी बताने के समान है। इस प्रकार से जो लोग ध्यान से रहते हैं, मीठा भोजते हैं, प्रेम से भोजन कराते हैं, प्रेम से अपने पास रखते हैं, उनको उनका व्यवहार भगवान का किया हुआ व्यवहार समझना चाहिए। अपने से पूज्य पिता माता गुरुजन परिवार में और भी बड़े हैं उनकी खूब सेवा करो, पवित्रता से रहो, घर को साफ सुथरा रखो और व्यवहार को भी पवित्र रखो। ये बहुत बड़ी सेवा है, इससे आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया सत्संग का बात।